ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयन पर द्वितीय एशिया प्रशांत मंत्र स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र अपनाए जाने का भी ऐलान करेंगे। सम्मेलन का आयोजन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। 3,437 करोड़ रुपए की इस योजना में आय संबंधी कोई सीमा नहीं रखी गई है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जो प्रतिबद्धता व्यक्त की थी वो इस महत्वपूर्ण निर्णय से पूरी हो गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000 रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार आएंगे और लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ के पात्र होंगे। सरकार ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435 करोड़ रुपए के व्यय से सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना में कुल 70,125 करोड़ रुपए के परिव्यय से 62,500 किलोमीटर नए सड़क मार्ग का निर्माण कर 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु संबंधी जानकारी में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए मिशन मौसम योजना को मंजूरी दी है। 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ये योजना कार्यान्वित होगी। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से और चंद्रमोहन पंचकुला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने निर्मल सिंह को अम्बाला सिटी से और रामनिवास रारा को हिसार विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा है। प्रदीप नरवाल भवानी खेड़ा से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने रोहतास जांगड़ा को सिरसा विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि कमर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से और सतीश फागना एनआईटी फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने बारामूला सीट से मीर इकबाल और बांदीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट को टिकट दिया है, जबकि अशोक भगत अखनूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम मंजूरी दी है। हांगकांग ओपन बैडमिंटन में कल सिंगल्स मुकाबले में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। पुरुष सिंगल्स स्पर्धा में भारत के प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज को शुरुआती दौर में पराजय का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप और तान्या हेमंत भी अगले दौर में पहुंचने में नाकाम रहीं। मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी ने पहले दौर में हमवतन कोना तरुण और श्री कृष्ण प्रिया कुदरावल्ली की जोड़ी को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।